आज की ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट
और मैं हूं आपका सह मेजबान। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सच कहूं तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया हिला सकती है।
हाँ बिल्कुल, किताब का नाम है फैक्टफुलनेस और इसे लिखा है हैंस रोसलिंग ने उनके बेटे ओला रोसलिंग और बहू एना रोसलिंग रोनुलुंड के साथ मिलकर।
फैक्टफुलनेस, नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना।
हाँ,
तथ्यों पर आधारित होना।
सही कहा। और ये आज इतनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम हर तरफ से खबरों से घिरे हैं, टीवी, सोशल मीडिया, और ज्यादातर खबरें कैसी होती हैं?
डरावनी, निराशाजनक। ऐसा लगता है दुनिया बस गर्द में जा रही है, हर रोज कोई नई आफत।
बिल्कुल। और हैंस रोसलिंग इसी सोच को, इसी निराशावाद को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि ये न सिर्फ हमें बेवजह का तनाव देता है
बल्कि हमें दुनिया की असल तस्वीर देखने और सही फैसले लेने से भी रोकता है। तो ये किताब एक तरह से हमें तथ्यों का चश्मा पहनाती है।
एक साफ नजरिया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस किताब की गहराइयों में उतरना।
सबसे पहले शायद हैंस रोसलिंग के बारे में थोड़ी बात कर लें। वो सिर्फ एक एकेडमिक या डॉक्टर नहीं थे।
हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। हैंस रोसलिंग 1948-2017 स्वीडन के थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी खास बात थी उनका जमीनी अनुभव।
सही। उन्होंने कई साल अफ्रीका के बहुत पिछड़े ग्रामीण इलाकों में काम किया, मौजा इन पीक में खास तौर पे।
वहाँ उन्होंने गरीबी को, स्वास्थ्य की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा, मतलब आंकड़ों में नहीं बल्कि जीते जागते इंसानों के बीच।
और वहीं उन्होंने कॉन्जो नाम की एक नई लकवाग्रस्त करने वाली बीमारी की खोज भी की थी। तो उनका नजरिया सिर्फ थ्योरी वाला नहीं था, एकदम प्रैक्टिकल था।
बिल्कुल। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें वो हुनर दिया कि वो आंकड़ों को इंसानी कहानियों से जोड़ पाते थे। बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के प्रोफेसर बने
और उन्होंने गैप माइंडर फाउंडेशन की सह स्थापना की। उनके टेड टॉक्स तो मतलब कमाल ही थे।
ओ हाँ, वो बबल चार्ट्स वाले।
हाँ, जिस तरह वो दुनिया भर के जटिल आंकड़ों को चलते फिरते रंगीन बबल से दिखाते थे, वो देखने लायक होता था। करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा और समझा।
तो हम कह सकते हैं कि उनमें तीन चीजों का गजब का मेल था: जमीनी हकीकत का ज्ञान, आंकड़ों का गहरा विश्लेषण और अपनी बात को सरल और रोचक तरीके से कहने की कला।
बिल्कुल। और फैक्टफुलनेस उनके जीवन भर के काम और सोच का निचोड़ है, एक तरह से उनकी विरासत।
तो चलो अब किताब पर आते हैं। फैक्टफुलनेस है किस बारे में, मतलब इसका सार क्या है?
असल में ये किताब हमारे जहन की 10 ऐसी आदतों या सहज प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स के बारे में है जिनकी वजह से हम दुनिया को असलियत से ज्यादा नाटकीय, ज्यादा डरावना और ज्यादा बटा हुआ देखते हैं।
अच्छा, 10 आदतें, या आप कह लें कि 10 तरह के मानसिक फिल्टर जो हमारी सोच को धुंधला कर देते हैं।
हाँ, और किताब का सबसे बड़ा दावा यह है कि दुनिया लगातार बिगड़ती नहीं जा रही है जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं।
ये तो बहुत बड़ा दावा है क्योंकि हमें तो यही लगता है।
बिल्कुल। लेकिन रोसलिंग आंकड़ों से दिखाते हैं कि पिछले कुछ दशकों में मानव इतिहास में जबरदस्त प्रगति हुई है, चाहे वो घोर गरीबी का कम होना हो या बच्चों की मृत्यु दर का घटना या शिक्षा का बढ़ना।
पर ये बातें हमें सुनाई क्यों नहीं देतीं ज्यादा?
क्योंकि ये प्रगति धीमी होती है, उबाऊ होती है मीडिया के लिए, और हमारी वो 10 सहज प्रवृत्तियां हमें से देखने नहीं देती।
और ये मजेदार बात है कि किताब की शुरुआत एक क्विज से होती है, दुनिया के बारे में कुछ बुनियादी सवाल।
हाँ, और पता है क्या, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट्स, नोबल विजेता तक, उन सवालों के जवाब इतने गलत देते हैं
कि रोसलिंग मजाक में कहते हैं कि अगर चिंपैंजी अंदाजे से जवाब देते तो उनका स्कोर ज्यादा बेहतर होता।
सोचिए, ये दिखाता है कि हमारी बेसिक समझ ही कितनी बायस्ड है, मतलब पक्षपातपूर्ण है।
तो किताब इन्हीं 10 प्रवृत्तियों की पहचान करती है, जैसे चीजों को दो हिस्सों में बांटना, अमीर बनाम गरीब।
हाँ।
या सिर्फ बुरी खबरों पर ध्यान देना।
हाँ, और फिर वो बताते हैं कि इन प्रवृत्तियों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचें। इसके लिए वो कुछ आसान नियम या टूल्स देते हैं।
और एक बहुत जरूरी बात जो वो कहते हैं, दुनिया को विकसित और विकासशील में बांटना अब बंद करो, ये पुराना हो चुका है।
बिल्कुल। वो 4 आय स्तरों का नया मॉडल देते हैं जो दिखाता है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी अब बीच के स्तरों पर है, न बहुत गरीब न बहुत अमीर।
तो ये आशावाद नहीं बल्कि संभाव्यवाद है, मतलब तथ्यों के आधार पर समझना कि क्या स्थिति है और क्या संभव है।
चलो अब कुछ मुख्य नाटकीय सहज प्रवृत्तियों को थोड़ा और खोलते हैं। पहली वाली है अंतर प्रवृत्ति।
अच्छा, गैप इंस्टिंक्ट, ये क्या है?
ये हमारी वो आदत है कि हम हर चीज को दो अलग अलग और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ वाले खेमों में बांट देते हैं, अमीर और गरीब, पश्चिम और बाकी दुनिया। हम और वो?
हाँ, ये तो हम करते हैं। जैसे दुनिया मतलब या तो अमेरिका यूरोप या फिर अफ्रीका एशिया के गरीब देश।
बिल्कुल, रॉजलिंग कहते हैं ये तस्वीर एकदम गलत है। अब ऐसी कोई खाई नहीं है, ज्यादातर देश और लोग बीच में कहीं हैं। इसे समझने के लिए वो चार आयस्तर बताते हैं।
हाँ, वो चार स्तर क्या थे वो?
स्तर एक, जो लोग रोजाना $2 से कम पर जीते हैं, लगभग 1 अरब लोग। ये वो घोर गरीबी है जिसकी हम कल्पना करते हैं, नंगे पैर, पीने का साफ पानी नहीं वगैरह।
ठीक है, स्तर एक।
स्तर दो, जो रोजाना $2 से $8 कमाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, करीब 3 अरब लोग। इनके पास शायद साइकिल हो, गैस स्टोव हो, बच्चे स्कूल जाते हों।
3 अरब यानी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ है।
हाँ। फिर स्तर थ्री, रोजाना $8 से $32 वाले। ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, करीब 2 अरब लोग। इनके पास शायद स्कूटर या पुरानी कार हो, घर में नल से पानी आता हो।
ओके, स्तर दो और तीन मिलाकर ही 5 अरब लोग हो गए।
एग्जैक्टली। और फिर स्तर चार, जो रोजाना $32 से ज्यादा कमाते हैं, ये करीब 1 अरब लोग हैं, हम और आप जैसे लोग जिनके पास ठीक ठाक घर, कार, छुट्टियां वगैरह होती हैं।
तो ये चार स्तर दिखाते हैं कि हम और वो वाली सोच बेकार है। ज्यादातर लोग बीच में हैं, कोई बड़ा गैप या खाई नहीं है, बल्कि एक निरंतरता है।
बिल्कुल, हमें औसत देखने की बजाय पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए। दुनिया बटी हुई नहीं, जुड़ी हुई है।
ये नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अब दूसरी प्रवृत्ति पर आते हैं, नकारात्मकता प्रवृत्ति,
द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट।
हाँ, ये कि हमें हमेशा बुरी खबरें ही क्यों याद रहती हैं या अच्छी लगती हैं?
क्यों होता है ऐसा?
देखो, इसके दो कारण हैं। एक तो मीडिया, बुरी खबरें बिकती हैं, धीरे धीरे होने वाला सुधार बोरिंग होता है। दूसरा, हमारा दिमाग। शायद विकास के क्रम में ही ऐसा हुआ कि खतरों पर ध्यान देना हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी था,
तो हम बुरी खबरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। हाँ, नतीजा ये होता है कि हमें लगता है दुनिया बद से बदतर होती जा रही है, जबकि आंकड़े देखो तो।
क्या कहते हैं आंकड़े?
पिछले सिर्फ 20 सालों में दुनिया में घोर गरीबी, स्तर एक वाले में रहने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग आधा हो गया।
आधा? ये तो बहुत बड़ी बात
है ना। बाल मृत्यु दर ऐतिहासिक रूप से कम हुई है, ज्यादा लड़कियां स्कूल जा रही हैं, साक्षरता बढ़ी है, लेकिन ये खबरें हेडलाइन नहीं बनती।
तो रॉजलिंग कहते हैं, रुको एक मिनट, चीजें एक ही समय पर बुरी और बेहतर दोनों हो सकती हैं।
बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। दुनिया में आज भी भयानक समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज है, असमानता है, ये बुरी बात हुई। लेकिन साथ ही कई पैमानों पर जबरदस्त सुधार भी हुआ है, ये बेहतर बात हुई। हमें दोनों को एक साथ देखना सीखना होगा। सिर्फ नकारात्मकता देखने से हम हताश हो जाते हैं और प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं।
सही बात है।
अच्छा, तीसरी प्रवृत्ति सीधी रेखा प्रवृत्ति, द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट, ये क्या कहती है? ये हमारी वो सोच है कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो हमेशा उसी दिशा में, उसी रफ्तार से एक सीधी रेखा में चलता रहेगा।
जैसे ग्राफ पे एक सीधी लाइन खींच दियो।
अच्छा,
जैसे अगर किसी चीज की बिक्री बढ़ रही है तो हम मान लेते हैं कि वो बढ़ती ही जाएगी।
हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है दुनिया की आबादी। हमें लगता है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और ये बस बढ़ती ही जाएगी, धरती पर बोझ बढ़ता ही जाएगा।
हाँ, ये डर तो बहुत आम है।
लेकिन रॉसलिंग आंकड़ों से दिखाते हैं कि ये सीधी रेखा वाली सोच गलत है। दुनिया भर में जन्म दर, फर्टिलिटी रेट यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या बहुत तेजी से गिरी है।
कितनी?
1965 में ये औसतन 5 बच्चे प्रति महिला थी, आज ये सिर्फ 2.5 है।
अरे वाह।
हाँ, और जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। यूएन का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक ये लगभग 11 अरब पर जाकर स्थिर हो जाएगी। तो ग्राफ सीधी रेखा में ऊपर नहीं जा रहा,
वो मुड़ रहा है, एस शेप कर्व जैसा।
बिल्कुल। तो ट्रेंड हमेशा सीधे नहीं होते, हमें उनके आकार को समझना होता है। सीधी रेखा का अनुमान अक्सर गलत होता है।
ये भी सोचने वाली बात है। और एक और जरूरी प्रवृत्ति आपने बताई थी, भय प्रवृत्ति,
द फियर इंस्टिंक्ट।
हाँ,
डर। हमारा दिमाग उन चीजों पर फौरन ध्यान देता है जिनसे हमें डर लगता है, आतंकवाद, प्लेन क्रैश, भूकंप, महामारी,
जो चीजें नाटकीय हैं और मीडिया में छाई रहती हैं।
सही, लेकिन रॉसलिंग पूछते हैं, क्या इन चीजों से होने वाला वास्तविक खतरा उतना ही बड़ा है जितना हमें महसूस होता है?
और जवाब है?
जवाब है नहीं। आंकड़े दिखाते हैं कि इन नाटकीय खतरों से मरने का जोखिम उन कम नाटकीय चीजों के मुकाबले बहुत कम है जिनसे हम रोज जूझते हैं।
जैसे?
जैसे डायबिटीज, प्रदूषण या सड़क दुर्घटनाएं, इनसे कहीं ज्यादा लोग मरते हैं। या जैसे प्राकृतिक आपदाएं, उनसे होने वाली मौतें पिछले 100 सालों में काफी कम हुई हैं क्योंकि हमारी तैयारी बेहतर हुई है।
लेकिन मीडिया कवरेज ऐसा होता है कि हमें लगता है खतरा बढ़ गया है।
बिल्कुल, तो हमें अपने महसूस किए गए डर परसीव्ड रिस्क और असल आंकड़ों वाले जोखिम एक्चुअल रिस्क में फर्क करना सीखना होगा। जब डर लगे तो पूछो, आंकड़े क्या कहते हैं, क्या ये खतरा वाकई बहुत बड़ा है।
ये हमें चीजों को सही परिपेक्षी में रखने में मदद करेगा।
हाँ, बेवजह के डर से बचेंगे।
तो ये थी कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ। अब अगर हम पूरी किताब के निचोड़ या मुख्य संदेशों की बात करें तो क्या निकल कर आता है?
देखो, पहला और सबसे बड़ा संदेश तो वही है, दुनिया को विकसित और विकासशील के खांचों में बांटना बंद करो। ये आउटडेटेड है। ज्यादातर दुनिया बीच में है, लेवल 2 और 3 पर।
हाँ, वो 4 आय स्तर वाला मॉडल ज्यादा सच्चा है।
दूसरा, कि चीजें एक ही समय पर बुरी और बेहतर हो सकती हैं। इस जटिलता को स्वीकार करना जरूरी है। प्रगति को पहचानना समस्याओं को नकारना नहीं है।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हमें एक संतुलित नजरिया देती है। ये हमारी अपनी जिंदगी में भी लागू होती है ना? मुश्किलें हैं, पर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है।
बिल्कुल। तीसरा, तथ्यों और आंकड़ों को समझना। आज के जमाने में ये सिर्फ जानकारी की बात नहीं, एक नागरिक की जिम्मेदारी है। सही फैसले लेने के लिए जरूरी है कि हम दुनिया को आंकड़ों के आईने में देखें, लेकिन सही संदर्भ के साथ।
बिना तथ्यों के हम आसानी से गुमराह हो सकते हैं।
और चौथा संदेश है संभाव्यवाद। ना निराशावाद, ना अंधा आशावाद, बल्कि तथ्यों पर आधारित ये सोच कि हाँ, समस्याएं हैं, पर प्रगति भी हुई है और आगे भी संभव है।
अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ भी यही बात लागू होती है। चुनौतियाँ बहुत हैं, पर कई क्षेत्रों में धीरे धीरे सुधार भी दिख रहा है। उसे पहचानना जरूरी है।
बिल्कुल, ये हमें काम करते रहने की प्रेरणा देता है।
किताब में ऐसी कई पंक्तियाँ हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं। कुछ यादगार कथन साझा करें?
हाँ बिल्कुल। एक तो हुई जो हम बार बार कह रहे हैं, चीजें एक ही समय पर बुरी और बेहतर हो सकती हैं। ये शायद किताब का मूल मंत्र है।
कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकारना। और मीडिया वाला कथन भी कमाल का है।
कौन सा?
मीडिया पर भरोसा करके दुनिया के बारे में अपनी राय बनाना वैसा ही है जैसे सिर्फ मेरे पैर की तस्वीर देखकर मेरे बारे में पूरी राय बनाना।
हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मीडिया हमें कितना अधूरा नजरिया दिखाता है, अक्सर सबसे नाटकीय हिस्सा।
सही। और ये भी बहुत गहरा है, दुनिया को नंबरों के बिना नहीं समझा जा सकता, लेकिन दुनिया को सिर्फ नंबरों से भी नहीं समझा जा सकता।
वाह, क्या संतुलन है। आंकड़े जरूरी हैं, पर आंकड़ों के पीछे की कहानियां, इंसानी पहलू, वो भी उतना ही जरूरी है।
एक और था अत्यावश्यकता प्रवृत्ति,
अर्जेंसी इंस्टिंक्ट।
हाँ, जब कोई चीज अत्यावश्यक लगे तो याद रखें कि वो शायद उतनी जरूरी नहीं है।
मतलब जब लगे कि फौरन कुछ करना है नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो रुको, सोचो, आंकड़े देखो। हड़बड़ी में अक्सर गलत फैसले होते हैं।
सही। तो ये सब सोचने के तरीके हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को कैसे इस्तेमाल करें।
देखो, सबसे पहला काम तो हम जानकारी लेते वक्त कर सकते हैं। जब भी कोई खबर पढ़ें या सुने, खासकर जो बहुत डरावनी या चौंकाने वाली हो,
तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या यहाँ मेरी कोई नाटकीय प्रवृत्ति काम कर रही है, जैसे डर या नकारात्मकता?
हाँ, क्या इसका कोई और पहलू है? क्या आंकड़े कुछ और कहते हैं? थोड़ा गूगल कर लें, अलग अलग सोर्स देख लें।
इससे हमारा तनाव भी कम हो सकता है ना, जब हम भय प्रवृत्ति को समझकर असली जोखिम को पहचानते हैं।
बिल्कुल। और जब नकारात्मकता प्रवृत्ति को काबू में रखकर दुनिया में हो रहे सुधार को देखते हैं, तो थोड़ी उम्मीद जगती है, निराशा कम होती है।
और जब हम दोस्तों या परिवार से बात करते हैं तब भी ये काम आ सकता है।
कैसे?
जैसे दुनिया की समस्याओं पर बात करते हुए चीजों को सिर्फ अच्छा या बुरा, सही या गलत में ना बांटें, अंतर प्रवृत्ति से बचें,
अलग अलग नजरियों को समझें,
और सामान्यकरण से बचें। सामान्यकरण प्रवृत्ति मतलब किसी एक उदाहरण के आधार पर पूरे समूह या देश के बारे में राय न बनाएं। हाँ, ये बहुत होता है। और सबसे जरूरी शायद ये है कि हम सीखते रहें, अपनी जानकारी को अपडेट करते रहें।
बिल्कुल। भाग्य प्रवृत्ति हमें ये मानने पर मजबूर करती है कि कुछ चीजें या लोग कभी नहीं बदलेंगे, उनका भाग्यता है, लेकिन फैक्टफुलनेस दिखाता है कि बदलाव ही सच है। तो दिमाग खुला रखना और सीखते रहना जरूरी है।
तो कुल मिलाकर मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया को लेकर हमारी जो सहज समझ है, हमारी गट फीलिंग, वो अक्सर गलत होती है, पुरानी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सुधारा जा सकता है। फैक्टफुलनेस हमें सोचने का एक नया, ज्यादा शांत, ज्यादा तर्कसंगत तरीका सिखाती है।
सही रहा। और मेरे लिए जो सबसे अहम बात है वो है बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ये मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता, मेरी समझ अधूरी हो सकती है, मुझे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
जब हम तथ्यों के आधार पर दुनिया को देखते हैं तो हम बेवजह के डर या झूठी उम्मीदों से बचते हैं, हम समस्याओं को ज्यादा साफ देख पाते हैं और शायद बेहतर समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। ये किताब वाकई एक उम्मीद जगाने वाली और ताकत देने वाली किताब है।
बिल्कुल सहमत हूँ।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।